नमः सिद्धेभ्यः मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानां जैनं जेतु शासनं अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। यह वह घटना है जहां पर मनुष्यों को कुछ सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। यह वह घटना है शारीरिक पक्ष को गौण करके आत्मिक पक्ष को मुख्यता देना होता है, तब यह बात समझ में आ सकती है। अनुमान में तो हम शास्त्र पढ़ करके ला सकते हैं, किंतु यदि इस घटना को आत्मसात कर लें तो यह निश्चित हो जाता है कि वस्तुतः बाहरी पक्ष के अपेक्षा से शरीर पक्ष के अपेक्षा से आत्मिक पक्ष बहुत बलवान है, जिस पर हम लोगों का पूरा उज्जवल भविष्य आधारित है। चाहें तो उस पक्ष को हम मजबूत बना दें, उसको उज्जवल बनाने का प्रयास कर लें, नहीं है तो जड़ की यह सेवा तो अनंत काल से होती ही आ रही है। एक भूखा प्राणी और अपने लिए जब भोजन मिल जाता है तो कभी भी वह इधर उधर देखेगा नहीं, अपनी भूख को मिटाने के लिए, अपनी तृष्णा को मिटाने के लिए विलंब न करते हुए वह उस ओर झपटेगा। और वही बात वहां पर घटी और वह उस झपटने के लिए एक साथ दौड़ लगा दी, क्योंकि उसे यह ज्ञात था कि अन्यत्र वह इस ढंग से अपने लिए उपलब्धि नहीं हो पाएगी, अब इस अवसर में निश्चित रूप से पूर्ति हो जाएगी। लेकिन बात ऐसी है, एक व्यक्ति भक्षक भी होता है, दूसरा व्यक्ति रक्षक के रूप में भी वहां पर आकर के उपस्थित हो जाता है। यह भक्षण और रक्षण की प्रक्रिया दोनों ही अपने अपने कर्म प्रक्रिया के ऊपर आधारित हैं। जैसा जिस समय में कर्म का उदय होता है वैसा ही यह इष्ट और अनिष्ट दोनों का संयोग हुआ करता है। जो भारी पाली होगी उसी की कीमत मानी जाएगी, और यदि हल्की होगी तो वह हल्की ही मानी जाती है। संसारी प्राणी इस रहस्य को नहीं समझता, और यदि समझना है तो बहुत अच्छे ढंग से समझ लेना चाहिए। धर्म से प्रेरित जब यह आत्म तत्व हो जाता है तो वह दूसरे के लिए धर्म नहीं करता, यह सब सर्वप्रथम अपने को विश्वास के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। जो कोई भी धर्मात्मा धर्म करता है उसे अपने के लिए ही करना होता है, भले ही वह दूसरे के निमित्त को बना करके लेता है। हम दर्पण को देखते हैं, उद्देश्य दर्पण को देखना नहीं होता, किंतु दर्पण को देखे बिना अपना मुख नहीं दिखता, इसलिए बीच में दर्पण का सहारा लिया जाता है। दो पैर जब कमजोर हो जाते हैं तो तीसरा पैर एक लकड़ी हाथ में ली जाती है। उस लकड़ी का उपयोग इतना ही है कि दोनों पैर लड़खड़ाए नहीं और शरीर का बैलेंस जो है बना रहे, अन्यथा उस लकड़ी में कोई भी मार्गदर्शन देने की क्षमता नहीं और न ही वह और कुछ कार्य कर सकता। यही एकमात्र जड़ तत्व के साथ हो जाता है। जो कुछ भी सावधानी हमारी होने चाहिए, जिस अवसर पर होना चाहिए उसी अवसर पर होना चाहिए। तो एक ने झपट लगाया तो वहीं पर दूसरा व्यक्ति था, उसने सोचा कि यह मेरा कर्तव्य है और मेरे लिए भी झपट उसी प्रकार लगाना अनिवार्य है, अन्यथा मेरा कर्तव्य समाप्त हो जाएगा, मेरी ड्यूटी समाप्त हो जाएगी, मेरा धर्म ओझल हो जाएगा। और जहां पर धर्म ओझल हुआ तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं। यह विश्वास उसे था, यह धारणा उसकी थी, इस आस्था के साथ ही उसने, जो कि एक बलवान व्यक्ति के ऊपर थोड़ा सा कमजोर व्यक्ति माना जाता, उसने हमला कर दिया। और ऐसा हमला कर दिया, जो बलवान था उसने सोचा कि मैं तो इस वन का राजा हूं और राजा के ऊपर दूसरा कोई राजा तो आ नहीं सकता, आ भी जाए तो भी वह क्षम्य है, लेकिन ये तो राजा तो है ही नहीं। लेकिन बात ऐसी होती है, लौकिक दृष्टि से हम राजा, छोटे राजा, बड़े राजा आदि आदि मान लेते हैं, अथवा महाराज और बड़े महाराज, ये एक लौकिक और व्यावहारिक बात है। जब भगवान को हम देखते हैं, बड़े भगवान को ले आओ और छोटे भगवान को ले आओ, ये कुछ समझ में नहीं आता। एक भगवान विघ्न को दूर कर दे और एक भगवान शांति को दे दे, ये भी एक आस्था तो है, लेकिन ये बाहरी पक्ष की मुख्यता है, ये भी होने चाहिए समय पर, लेकिन इस बाहरी पक्ष के साथ जब हम आत्म पक्ष की ओर देखते हैं तो बाहरी पक्ष अपने आप ही गौण हो जाता है, जिस समय हम दर्पण में अपना मुख देख लेते हैं। जब दर्पण में अपना मुख दिखता है तो फिर दर्पण दिखता तो है, लेकिन क्या देखते हैं आप मुझे बताओ? दर्पण को देखते नहीं, दर्पण दिखता है और अपने मुख को हम देखते हैं, वह दिखता नहीं, वह उसको हम देखते हैं। जब हम अपने आप को मुख्यता दे देते हैं तो हम ही हम दिखने लग जाते हैं, वीतरा भगवान भगवान ही दिखने लग जाते हैं, गुरु गुरु ही दिखने लग जाते हैं, गुरु के इर्द गिर्द जो कुछ भी परिसर है वह नहीं दिखता, क्योंकि उद्देश्य वह नहीं रहता। उद्देश्य के अनुसार ही निर्देश भी होना चाहिए। शब्दावली में भी वीतरागता यदि मुख्यता रहती है, शब्द कोई भी हो बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं, क्योंकि अर्थ उद्देश्य वीतरागता रहती है। और सुस्वर नाम कर्म का उदय भी हो, यदि आत्म तत्व का व्याख्यान नहीं हो तो कुछ लोगों को वह अच्छा लग सकता है, लेकिन आत्मिक बात की जब बात आ जाती है शब्द अवश्य ही गौण हो जाता है। राग रंगिनी वहां पर जहां पर संगीत है, किंतु जहां पर आत्मा की बात आ जाती है वहां संगीत गौण हो जाता है, शब्द गौण हो जाते हैं, बाहरी पक्ष गौण हो जाता है, सारा सारा पक्ष ही विश्व ही वहां पर गौण मौन हो जाता है और आत्मा सामने आ जाता है। धर्म के मामले में भी यही विषय है। जब धार्मिक पक्ष हमारा मुख्य हो जाता है तब बड़ा और छोटा वहां पर नाम नहीं आता। और उसने धर्म को देखा, धर्मात्मा को देखा और अपने धर्म कर्तव्य ड्यूटी को देखा, बस झपट दिया, खबरदार आगे बढ़ नहीं सकते आप, कौन है वो, मुड़ करके देखो। देखो मुड़ करके देखने का मेरा स्वभाव नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना जब कोई चुनौती देता है तो मुड़ करके आना ही पड़ता है। मैं कह रहा हूं आप राजा हैं, मैं राजा तो नहीं लेकिन ये चुनौती है, मुझे बीच में आपने लाया, अब बीच में लाया तो इसको दूर करो, फिर बाद में जाओ आगे, अन्यथा राजा का कर्तव्य समाप्त हो जाता है। देख लो बस, गुस्सा तो आ ही गया, स्वाभिमान तो जागृत हुआ, छोटा व्यक्तित्व चुनौती दे रहा है और बड़े व्यक्तित्व के सामने और ऐसे शब्दों के साथ दहाड़ते हुए वह भी कहता है, दहाड़ने से आप लोगों को ज्ञात हो गया, ये दहाड़ने को ले वही व्यक्ति है, या दहाड़ने वाले कई व्यक्ति हुआ करते हैं, दहाड़ने वाले कई व्यक्ति हुआ करते हैं, लेकिन फिर भी दहाड़ कहने से एक पक्ष तो निश्चित रूप से सिद्ध हो गया कि दहाड़ तो सिंह की ही हुआ करता है। लेकिन उस दहाड़ को आज मात खाना पड़ेगा, उस दहाड़ का आज स्वरूप विकृत हो जाएगा, क्योंकि धार्मिक पक्ष में उसने ठीक ठीक न्याय नहीं किया। और एक तरफ से सिंह है तो दूसरे तरफ से एक सुअर आ जाता है। ये कथा आप लोगों ने रत्नकरंड श्रावकाचार्य में पढ़ी होगी, श्रावकों के लिए ये कथा दी गई है और एक दार्शनिक उद्भट वीतरागी संत का यह उदाहरण है, आचार्य स्वामी समंत भद्र जो कि बहुत ही बड़े व्यक्तित्व को लिए हुए थे। व्यक्तित्व यद्यपि अपना अपना हुआ करता है लेकिन इस विषय में तो उनका व्यक्तित्व अपने आप में एक बहुत ही व्यापक व्यक्तित्व मानना चाहिए। उन्होंने इस उदाहरण को चुना, सिंह की और सुअर की लड़ाई प्रारंभ हो गई, घमासा युद्ध प्रारंभ हो गया और उस युद्ध में दोनों घायल हो जाते। सुअर कमजोर नहीं हुआ करता, ध्यान रखना, सुअर की मार अपने आप में बहुत तेज हुआ करती है, उसकी चपेट में जब तक नहीं आता नहीं आता, लेकिन आ गया तो व्यक्ति बचना मुश्किल है, जंगली सुअर है और वह अपना प्रहार प्रारंभ करती है, दोनों घायल हो जाते हैं और दोनों घायल होकर के दोनों की मौत हो जाती है। दोनों की मृत्यु, युद्ध में मृत्यु, संघर्ष में मृत्यु, कृष्ण लेशा के साथ मृत्यु, रौद्र ध्यान के साथ मृत्यु, किंतु दोनों के विषय उद्देश्य भिन्न भिन्न हैं। एक का उद्देश्य था एक को मार करके अपने भूख को मिटाना और एक का उद्देश्य था जिसको मारा जा रहा उसको बचाने का पक्ष। जो बचाने के लिए मार भी करता है वह अहिंसक माना जाता है और जो भोजन के लिए मार भी नहीं करता है तो भी वह हिंसक पक्ष माना जाता है। सन्नावो तिल्लेशा इंदी वशदाय अत्रुद्दानी नानंच दुप्प उत्तम मोह पावपया। ये पंचाष्टकाय में आचार्य कुंद कुंद की ये गाथा है। सन्नमो इतिल्लेशा, चार संज्ञाएं और तीन लेशाएं जो अशुभ मानी जाती है। चार संज्ञाएं मरता क्या नहीं करता और भूखा क्या नहीं करता, दोनों बात एक सी है। भूख लग जाती है तो जन्म दी हुई उस बच्चे को भी खा जाती है, उसको नहीं देखा जाता। भूख ऐसी होती है, भूख के पीछे बड़े बड़े साधक भी घुटने टेक देते हैं और अपनी साधना को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यह संज्ञा है, लेकिन इसकी पूर्ति करने के लिए जो ही चले जाते हैं तो ही पाप का ही बंद होना प्रारंभ हो जाता है, चाहे वो मुनि महाराज भी क्यों ना हो, उनको भी तत्संबंधी पाप का बंद छूट नहीं सकता। आहार करने के उपरांत जो विकता हो गई अथवा संज्ञा हो गई शरीर के लिए आवश्यक था, फिर भी तत्संबंधी प्रायश्चित सबको लेना पड़ता है, क्योंकि आहार लेने की इच्छा हो, इन किन प्रकार इन आहार लेकर के आना तो उसके लिए तो है ही नहीं, उसका तो अलग ही हिसाब किताब। लेकिन शुद्ध आहार लेने के उपरांत भी कहते हैं कि सन्ना वो तिल लेसा कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, तीन लेशा जो अशुभ हैं उनमें भी पाप का आश्रय होगा और आहार संज्ञा में भी पाप का ही आश्रय होगा, पुण्य का आश्रय नहीं, वो छूट नहीं सकता, चाहे वह तीर्थंकर भी क्यों ना हो। और तीर्थंकर के सामने बड़ी हस्ती कौन है, उस पाप से वो नहीं बच सकते। तो इसने किसको खाने का संकल्प किया था, किसने, एक ने संकल्प किया था खाने का जो सिंह था, और एक ने जिसको खाया जा रहा उसको बचाने के लिए संकल्प किया था, मैं मर जाऊं तो कोई परवाह नहीं लेकिन मेरे होते हुए उसको मारने नहीं दूंगा। मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात, लेकिन मरना हो तो मर जा, लेकिन जीते जी कुछ कर जा, नहीं तो सिर पर ले जा कर जा। मरना तो निश्चित है, इसमें कोई भी संदेह नहीं, और निश्चित है अभी घड़ी आ जाए तो चलना पड़ेगा, कोई यहां पर नहीं रुक सकता। मरीज से पहले भी डॉक्टर जी का नंबर आ सकता है, पहले नहीं, इसमें क्या वादा है, आ सकता है, चिकित्सा करते 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 वह लुढ़क सकता है, नाती से पहले दादाजी का नंबर आ सकता है, लेकिन दादाजी के सामने नाती का भी नंबर आ सकता है, इस दिशा में कोई पक्षपात नहीं। मरना तो एक दिन है, कहां सिंह और कहां सुअर, कहां राजा और कहां एक छोटा प्राणी, लेकिन जहां पर धार्मिक पक्ष है वहां पर छोटा बड़ा, मैंने पहले कह दिया, ये तो शरीर का पक्ष हो गया। आत्मिक पक्ष की ओर दृष्टिपात करते हैं तो उसका कितना बड़ा पक्ष है आत्मिक पक्ष, इसलिए उस आत्मिक पक्ष को लेकर के, धार्मिक पक्ष को लेकर के जो व्यक्ति युद्ध लड़ता है उसका ऊर्ध्वगमन ही होगा, कभी अधोगमन नहीं हो सकता। यह आत्मिक पक्ष की बात हो गई। मरना और मारना ये दोनों असंयम की भूमिका में हुआ करते हैं, मरने के लिए भी तैयार हो जाता है वह असंयमी हो जाता है, मारने के लिए भी तैयार हो जाता है वह असंयमी हो जाता है। मर जाए मिट जाए मिट जाए हमें से कोई मतलब नहीं, आत्मा में स्वस्थ हो जाता है वह व्यक्ति, इन दोनों के ऊपर उठा हुआ माना जाता है। इन दोनों की लड़ाई हुई, दोनों की मृत्यु हो गई। सुअर का यह संकल्प था, जब तक मैं रहूंगा तब तक मारने नहीं दूंगा। ये कितना बड़ा संकल्प है। ये मृत्यु से डर नहीं, सामने मारक व्यक्ति से डर नहीं, डर किससे है? ऐसे क्यों किया जा रहा? जिसका लालन पोषण के लिए जंगल में वह भी खाता होगा, पीता होगा, कुछ कार्य तो करता होगा, लेकिन मरने के लिए कैसा तैयार हो गया? मरने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता, और यह मरने के लिए और मारने के लिए कैसा तैयार हो गया? और मरण निश्चित है, इसको यह भी विश्वास है, मुझे इसमें मरना है, यह भी उसको विश्वास है, लेकिन फिर भी वह मैं मारने नहीं दूंगा जब तक मैं रहूंगा। ना भीति किम निजस्य परिपालनार्थम, यह पंक्ति है, क्योंकि मृत्यु गौण हो जाती है, शरीर पक्ष गौण हो जाता है, विषय वासना गौण हो जाती है, मुख्य एकमात्र धर्म रह जाता है। उसको देखने के लिए उसे आंखों की कोई आवश्यकता नहीं, ये आंखें मिट जाए तो कोई परवाह नहीं, लेकिन वह भीतरी आंख तो मिट ही नहीं सकती। यह विश्वास उसको था, मेरी तो दुर्गति हो ही नहीं सकती, जिस दिशा में मैं काम कर रहा हूं उससे मेरी तो दुर्दशा हो ही नहीं सकती, गति बिगड़ नहीं सकती, और उन्नति निश्चित है, इसलिए इस कर्तव्य से विमुख नहीं होना, विमुख होना प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। प्रश्न चिन्ह क्या? तो प्रश्न ही नहीं, निश्चित हम शरीर के पक्ष के हो जाएंगे। और वह मृत्यु हो गई, सिंह चला गया है नरक को, और सुवर चला गया है, राजा चला गया है नीचे के राज करने को, और यहां का जो किन्नर था वह देव बन करके देवी संपदा का उपभोक्ता बन गया। धर्म भाववाचक शब्द है, शरीर द्रव्यवाचक शब्द है, आत्मा उस धर्म का आधार है, आत्मा शरीर का आधार कथनचित है, लेकिन शरीर के बिना रह सकता है, लेकिन आत्मा उस भाव पक्ष धर्म के बिना नहीं रह सकता। जिसके बिना हम नहीं रह सकते उसको सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, और जिसके बिना रह सकते हैं और बहुत अच्छे ढंग से रह सकते हैं, तो वहां पर चुनौती कोई दे देता है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, जैसे सूर ने अच्छे ढंग से स्वीकारता कर ले कि मैं तीन काल में हटूंगा नहीं, मैं बीच में रहूंगा, और मुझे हटा करके आप जा सकते। कितना साहस है ये! अनेक व्यक्ति डर जाते हैं, बंदूक रखते हैं, तीर कमान रखते हैं, हथियार रखते हैं, पत्थर लेते हैं, और कुछ नहीं है तो अपने आत्मा की रक्षा के लिए, यानी अपने शरीर की रक्षा के लिए वह ऊपर जाकर के कहीं पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं, किसी भी प्रकार से मैं बच जाऊं। बचने का सवाल नहीं, आयु खेन मरणम, ये सूत्र है कुंदकुंद देव का। आयु का क्षय हुआ, मरण होगा। दीपक भले ही लीक नहीं करता, उसमें से तेल नहीं निकलता, लेकिन तेल जब समाप्त हो गया तो प्रकाश संभव ही नहीं है। शरीर तो शरीर है, सूक्ष्म शरीर जो आयु कर्म के ऊपर आधारित है, वह जब पूर्ण हो जाता है तो सूक्ष्म शरीर को यहां से लेकर के अन्यत्र जाना अनिवार्य हो जाता। यहाँ का यह बाहरी सांचा ढांचा यहीं का यहीं रह जाता है और अन्यत्र मशीन चली जाती है। ये बॉडी यहीं पर रह जाती है और मशीन को लेकर के अन्यत्र ले जाते हैं और पुनः दूसरी बॉडी बन जाती है, जैसे ट्रैक्टर वगैरह के लिए बन जाते हैं। एक्सीडेंट में मारुति के एक्सीडेंट हो जाए तो राम के पास चले जाए,
भारी सांचा है और सब एक में खो गया और मशीन को लेकर के चले जाते हैं, दूसरे जो है बॉडी बना देते हैं। ये तो शरीर तो मिलना ही अनिवार्य है, यदि मशीन है तो अनिवार्य है, बनेगी, शरीर का बिगाड़ होगा, पुनः सुधार होगा, नया आएगा, आना जाना यह लगा रहता है, लेकिन आत्मा का आना जाना नहीं लगा रहता, आत्मा हमेशा हमेशा रहती है। ये विश्वास क्या मनुष्य को ही होता है कि चिरिंच को भी हो सकता है? अरे वही तो आपके सामने कही जा रही है, यह मनुष्य को ही नहीं और बल्कि मनुष्य से भी बहुत अच्छा विश्वास उन त्रिरिंचों के पास रहता है। कई बार हमने कहा है सम्यक दृष्टि बनने के लिए या देह संयम या संयम धारण करने के लिए कम से कम 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त अनिवार्य है, व्यतीत हुए बिना वह ले नहीं सकता। त्रिरिंचों के लिए यह नियम नहीं है बंधुओं, इसमें देखने की आवश्यकता है। मनुष्य यदि एडमिशन लेगा तो 8 वर्ष के उपरांत मिलेंगे, लेकिन त्रिरिंच यदि लेना चाहता है, संयम लेना चाहता है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना चाहता तो 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त जाने की कोई आवश्यकता नहीं, बहुत जल्दी उन्हें प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह है सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की भूमिका मनुष्य से भी ज्यादा अच्छी पशुओं में या पक्षियों में रहती है, क्योंकि वो पशु होते हुए आप जैसे नहीं सोचते। आप लोग सोचते ज्यादा, अफसोस की बात है, काम तो करते ही नहीं। मीटिंग करेंगे, ईटिंग करेंगे, गेटिंग करेंगे, फिटिंग करेंगे, फिर इसके उपरांत ईटिंग करेंगे, फिर सोचते हैं ऐसा कहेंगे। ऐसा क्यों होता? जहां पर तर्कना, जहां पर युक्ति, जहां पर प्लानिंग, जहां पर योजना, बुद्धि का ज्यादा विकास होने से वह व्यक्ति लंबी चौड़ी योजना बनाता है, लंबी चौड़ी योजना बना करके रहने की अपेक्षा छोटा सा कार्य करना बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे भाग्योदय ने सोच लिया कि भैया 8-10 दिन में अपने को करना ही, धीरे धीरे एक एक कदम रखना ही, क्योंकि कार्य करने से या प्रारंभ करने से जो प्रभाव पड़ने वाला है वह केवल बातों से नहीं पड़ सकता, ये तो लोगों को भी ज्ञात हो गया। बहुत अच्छी बात है, दिन अस्त होने से पूर्व में जागृति आ गई। धीरे धीरे कार्य किया जाता, तो त्रियंचों ने भी ऐसे ऐसे कार्य किए धार्मिक क्षेत्र में, मनुष्य उसके सामने नगण्य जैसा रह जाता है। यह उसके शक्ति के बाहर की बात थी। मौत के घाट उतरना है, उतरना है, लेकिन मौत के घाट उतरना नहीं किंतु तर जाना है, ये उसे ज्ञात था। नदी पार करना है, अरे डूब जाओगे, डूब कैसे जाता हूं, धर्म का ये नैया है हमारे पास, यह यदि शरीर छूट जाता है, लेकिन हमारे लिए तो प्रतीक्षा वहां से अभी से चल रही है और वह जाकर के देर हो जाता है। यह पक्षपात नहीं है, यह धर्म का पक्ष माना जाता है, क्योंकि वीतरागता का पक्ष है। ऐसा कौन सा युद्ध हुआ और उस कौन से उनके उद्देश्य थे? तो सामने गुफा में एक वीतरागी संत बैठे हुए थे जो समय के लिए लीन हो गए थे। वो भी कभी डरने वाले नहीं थे, उन्हें ज्ञात हो सकता है इस गुफा में सिंह आ सकता है, क्योंकि गुफाओं में या तो सिंह या तो वो ही मुनि महाराज रहते हैं, बाकी दो है कोई भी नहीं रह पाते। वहां पर जाकर के उन्होंने सामायिक का संकल्प ले लिया और बैठे हैं। सिंह अरण्य में जंगल में तो रहते ही, और वो आने वाला था और इनको ज्ञात था, हाँ ठीक है, और निर्विकल्प होकर के वो बैठ गए। जो निर्विकल्प आत्मस्थ हो गए हैं उनकी रक्षा करना श्रावक का कर्तव्य होता है, क्योंकि श्रावक को भी आगे जाकर के मुनि बनना है ना। जो व्यक्ति जिस तरफ जाना चाहता है, वह व्यक्ति जो गए हैं पहले से उनके बारे में अवश्य सुनता है, उनके बारे में अवश्य पढ़ता है, और यदि मान लो साक्षात्कार हो जाए तो उनसे वह कहता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, मैं कब और किस ढंग से वहां तक पहुंच सकता हूं। वो जो कहेंगे उसको वह मंजूर इसलिए कर देता है कि ये उसी क्षेत्र में पहुंच चुके। उसी प्रकार उस सूअर का भी संकल्प था, ये बहुत ही अटपट सा लगता है, सूअर, जंगली सूअर और अहिंसा धर्म का पालन करने का संकल्प, किसी को रक्षण करने का संकल्प। मुनि महाराज की बात को वो समझ रहा है, आंखें कोई भी लगा लो, बड़ी आंखें हो या छोटी आंखें, उसके द्वारा वस्तु तो सामने आएगी तो दिखेगी। बड़ा दर्पण हो उसमें हम दिखते हैं, छोटा दर्पण हो उसमें नहीं दिखते हैं, ऐसा नहीं। छोटी आंख भले ही शारीरिक पक्ष की अपेक्षा से हो सकती है, तिल के ऊंट में पहाड़ डूब जाता है या लुप्त हो जाता है, ओझल हो जाता है तिल के ऊंट में। तिल तो तिल कितना रहता, बहुत छोटा सा रहता, उसके ऊंट में पहाड़ कैसे समाप्त हो सकता है। तो हमने देखा तिल के ऊंट में पहाड़ है, तो तिल ले लिया और पहाड़ को अब लुप्त करना है तो कैसे करे, यूं लगा यूं आंख के ऊपर लगा लिया तो पहाड़ लुप्त हो गया। लगा कि तिल के स्थान में ही नेत्र ज्योति है, बाकी में नहीं, और है भी ऐसे ही, उसकी अवगाहना इतनी ही रहती है, लेकिन इतने होते हुए भी कितनी विराटता उस तिल में आकर के समाहित हो रही है। कितनी बड़ी महिमा है आंख की, इससे भी बड़ी महिमा है धर्म की। तीन लोक में कहीं भी जीव रहे आवे, धर्मात्मा के आंखों में मैं किसी भी प्रकार से उनको कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। मन से, वचन से, काय से, कृतकार्यता मोदन से, बनती कोशिश उनकी रक्षा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। इस प्रकार का भाव पक्ष उसका हमेशा जीवित रहता है, वचन पक्ष भी यदि है तो वह जीवित रहता है, और मन और वचन हो गए तो काय का पक्ष भले छोटा हो लेकिन काय का पक्ष तो काय का माना जाता है, क्योंकि यदि मन बिगड़ गया, वचन बिगड़ गए, तन विकृत हो गया, न सूरत बुरी है न सीरत बुरी, बुरी तो वह है जिसकी नियत बुरी है। मन कहां पर रहता पता नहीं लगता, उसकी नियत क्या है पता नहीं लगता। हम सूरत को भी अच्छे बनाना चाहते हैं, सीरत को भी अच्छे बनाना चाहते हैं, परिसर को अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं इसका मालिक बना करके रहूं, यह नियत बिगड़ गई तो सारा का सारा धूमिल हो जाता है। उस मन के पक्ष के द्वारा ही आज तक अधिकार जमाने का प्रयास हुआ है। शरीर के अधिकार, वचन के अधिकार और दूसरे के संपदा के ऊपर अधिकार लगाना, लेकिन एक सूअर होकर के अपने पक्ष को गौण समझते हुए भी धार्मिक पक्ष को गौण नहीं किया, उसका परिणाम यह निकला। मुनि महाराज को इनसे कोई मतलब नहीं था, मुनि महाराज ने कोई बातचीत नहीं की थी, ये सूअर तुम आ जाओ मेरे बदले में, तुम मर जाओ और मैं तपस्या करूं, आधी तपस्या तुम्हारे लिए ले दे दूं। नहीं, और उसको भी मालूम है कि मुझे इनसे कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन इनके निमित्त से मुझे क्या मिलने वाला है उसको याद है। यह धर्म पक्ष माना जाता है, यह आंखों के द्वारा देखने में नहीं आता, तब देखने में आ जाता कि इसके भाव क्या थे। संभव है और किसी को यह ज्ञात भी नहीं हो सकता, आपस में लड़ करके भिड़ करके मर गए ऐसा अनुमान लगाया जाता, लेकिन यह कथा परंपरा से कथा आई है। और स्वामी समंतभद्र महाराज ने धार्मिक पक्ष क्या होता है इसको दिखाने के लिए
आप लोगों के सामने रखा है, और ऐसा रखा है, कैसा रखा है, उसको अभय दान में मुख्य दाता के रूप में रखा। अभय दान मुनि महाराज की रक्षा के लिए उसने इस युद्ध को लड़ने का संकल्प किया और कटिबद्ध हुआ, और उसमें मौत के घाट उतरने के उपरांत उसको कोई चिंता नहीं। सिंह चला गया उधर, सूअर चला गया उधर, और सामने देखते रह गए महाराज। ओहो, लेकिन उनको बुरा इसलिए नहीं लगा, इसका अहित तो हुआ ही नहीं, और एक प्रकार से सिंह को ज्ञात हो गया कि यह सूअर ने मेरे ऊपर प्रहार क्यों किया, और किसी को समझाना नहीं था उसको, तुम उधर नहीं जा सकते। मतलब सूअर ने देखा था, और सिंह ने यह जान लिया कि सूअर ने देखा कि इसको बचाना चाहता है। इतना ज्ञान, इतना प्रशिक्षण, इतना उपदेश हम लोगों के माध्यम से सिंह को नहीं मिला, किंतु सूअर के माध्यम से अभयदान कैसा किया जाता है यह सिंह को मिला। और इसको कथानक के रूप में स्वामी समंत मद्र महाराज जी ने रत्नकंड श्रावकाचार्य में आप लोगों के लिए रखा। चार प्रकार के दानों में एक अभयदान होता है, और अभयदान ऐसा होता है, जीवों की रक्षा ऐसे की जाती है, केवल दवाई के माध्यम से नहीं की जाती है, किंतु ऐसा भी अभय दिया जा सकता है और दिया जाता है। स्वामी समंत मद्र महाराज तार्किक थे, युक्ति से चलते थे, और आप लोगों को समझाने के लिए उन्होंने सोचा कि इन लोगों को सीधे रास्ता पर लाने के लिए और कोई भी युक्ति है ही नहीं, तो कौन सी युक्ति है। उन्होंने सारे सारे त्रियंचों को उदाहरण के रूप में, फॉर एग्जाम्पल के रूप में ला करके रत्नगण श्राव का चिन्ह, कोई मेंढक को ला करके रख देते हैं, कोई सूअर को ला करके रख देते हैं, क्या और जो पक्ष बहुत कमजोर पक्ष मनुष्यों में हैं उनको ला करके रख देते हैं, और बता देते हैं देखो इन इन कार्यों में इन्होंने इस प्रकार के आदर्श स्थापित किए हैं। मनुष्य बहुत उलझन वाला प्राणी है तो प्राणी ये भी उलझे हुए मनुष्यों के लिए सुलझे हुए पशुओं के उदाहरण प्रस्तापित किया है रत्नकंड श्रावकाचार्य। क्यों भैया, आप लोगों की ताली बज नहीं रही है आज? लेकिन ताली किस प्रसंग में बजा रहे हो ये भी तो देख लो। उलझे, इतने उलझे हुए हैं, धर्म सामने आ गया फिर भी उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, और सूअर के सामने धर्म है तो उसने मृत्यु को भी बॉन कर दे, मृत्यु को या है ही नहीं ऐसा सोच लिया, तभी तो वह अजर अमर सूअर हो गया। एक आर्या छंद में, रत्नगण श्रावकाचार्य में वह अपने आप को अंकित कर दिया। धर्म के कारण इतना होता है, धर्मायतन बना देते हैं, यह भी एक उपकरण माना जाता है। जिस स्थान पे बैठ करके आप धर्म ध्यान करते हैं, असंख्यात गुणी कर्म के निर्जरा करते हैं, वो जो बना लेता है उस व्यक्ति को भी उसका हिस्सा अवश्य पहुंच जाता है। आपके द्वारा किया हुआ नहीं पहुंचता, लेकिन आपने किया है, लेकिन उसके लिए भी तत्संबंधी अवश्य बंद हो जाता है, और कर्म की निर्जरा भी हो जाती है। एक कर्तव्य के नाते यह करना आवश्यक होता है। स्वयं के लिए हम कर रहे हैं, पर को निमित्त बना करके किया जाता है। पर को निमित्त करके बनाने का अर्थ यह नहीं हम पर के लिए कर रहे हैं, कर तो रहे हैं हम स्व के लिए, पर को निमित्त बनाने से वह कार्य अच्छा चल जाता है। तो आप लोगों को अब सोचना है, जब अभयदान की अपेक्षा से सूअर भी हम लोगों से आगे हो सकता है। इसमें बहुत बड़ा धार्मिक पक्ष सुरक्षित रह जाता। हम लोग ठेकेदार हैं क्या? नहीं, उपदेश होते थे जंगलों में मुनि महाराजों के, संतों के, आप लोग भी सुनते थे और पशु पक्षी भी सुन जाते हैं, कभी बताते नहीं, अखबार पत्रिकाओं में उनके नाम नहीं आते, वह नाम नहीं आते इसलिए वो धर्मात्मा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो अपने आप आ जाते, ग्रंथों में नाम आ जाते, पत्रिकाओं में क्या? ग्रंथों में नाम आ गए, एक छोटा सा प्राणी मेंढक का नाम आ जाता, सुअर का नाम आ जाता है, अथवा और जिनको आप लोग हीन समझते, वस्तु तो हीन है, हिंसक है, लेकिन संकल्प लिया जाता है तो ऐसे लिया जाता है। मनुष्य संकल्प लेता है तो आगे पीछे देख लेता है और कह देता, महाराज मैं भी रात्रि भोजन का क्या करता हूं, समस्या आ जाए तो छूट। अब समस्या कब आएगी? तो हम भी बहुत ये है, सोचते हैं कोई बात नहीं, महाराज वैसे मैं रात में नहीं खाता, वैसे रात में खाता ही नहीं, कभी भी नहीं खाता, ये भी एक आध बार आ जाता है तो उसके लिए छूट लेता। तो हमने कहा भैया ये ध्यान रखो, वैसे आप तो एक महीने में कोई कभी खाते हैं ही नहीं, जब समस्या आ जाती है उसी दिन के लिए क्या कर देना, बाकी तो आप कर ही रहे हैं। अब ताली बज गई, निश्चित बात है। अब सोचना चाहिए, आज तक किसी भी पशु ने शर्त नहीं लगाया, इसीलिए सोचता हूं सम्यक दर्शन की भूमिका, सहिमा स्वामी की भूमिका उनकी बहुत जल्दी बनती है और आप लोग डावाडोल रहते, क्या पता महाराज ने किस ढंग से दिया, किस ढंग से लिया, आप बताओ, बहुत मुश्किल होता। कई ऐसे ग्राहक आ जाते हैं, समस्या आ जाती है, उन समस्याओं का हल ऐसे ही निकाल देता हूं, या सब 20-25 दिन तो निकाल देते हो, एक आध दिन हमारे नाम से निकाल दो, क्या बात हो गई, उस ओर देखेंगे तो निकल सकता है, उस ओर नहीं देख पाते इसलिए कमजोरी आ जाती। आप लोगों के सामने यह सूर की कथा और यह संघ की कथा और एक वीतरागी मुनि महाराज की कथा जो कि आपके सामने रखी है, और आपका अब 5 मिनट और लेना चाहता हूं कि जो निरपराधी पशु और पक्षी हैं उनकी हत्या आज हो रही है, किसी सिंह के द्वारा नहीं, किसी चीते के द्वारा नहीं, किसी सूअर के द्वारा नहीं, किसी भील के द्वारा नहीं, किसी और व्यक्ति के द्वारा नहीं, किंतु निमित्त उसमें राष्ट्र पूरा बन रहा है और करोड़ों की हत्या सामने सामने हो रही है, लेकिन अभयदान देने वाला, सूअर के पक्ष जैसे लेने वाला कोई भी माई के लाल समझ में नहीं आता, दूध कौन सा मिल रहा है खाने के लिए पीने के लिए। आप लोगों को सोचना चाहिए, अपनी कौम की बात सोच लेना चाहिए, अपनी परंपरा की बात सोच लेना चाहिए, अपने जो खानदान की बात सोच लेना चाहिए और उसकी शान बचा करके रखना चाहिए कि बरसों हो गए लेकिन भारतवर्ष में इस प्रकार का इतिहास नहीं है जो आज करोड़ों की आहुति एक वर्ष में होती है और ऐसी होती है आप लोग देखते रह जाते हैं, और उसके माध्यम से जो मुद्रा आ जाती है राष्ट्र की उन्नति में लगाई जाती है, हमें समझ में बात नहीं आती। अभी अभी आके एक नेताजी आए थे यहां पर, उनके सामने ये बातें हमने रखी। हाँ महाराज आप रख रहे हैं ये बात हमारे सामने भी है, लेकिन हमने कहा देखो लेकिन से ही काम गड़बड़ हो जाता है, जिस वाक्य में लेकिन बट परंतु आ जाते हैं वो वाक्य अधूरा माना जाता, नहीं वह पूरा समाप्त हो जाता है, उसके बाद जो कुछ भी लिखा जाता है वही वाक्य माना जाता है, ये निषेध वाचक है शब्द, इसलिए मैं निषेध वाचक नहीं, पॉजिटिव मुझे बता दो आप कहां पर क्या काम कर रहे हैं। महाराज हम कह तो नहीं सकते लेकिन अवश्य कर रहे हैं, हमने भी समझा उनकी एक समस्या है, सामूहिक कार्य को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति की आवश्यकता होती है, एक वैयक्तिक कार्य होता है और एक सामाजिक कार्य, एक राष्ट्र संबंधी कार्य होता है, उसमें बहुत कठिनाई आ सकती है, फिर भी हमने ये कहा कि हमारा कर्तव्य होता है। यदि हम एक से एक मिलकर के 11 हो जाते हैं और एक हो जाते हैं तो और संख्या बढ़ सकती है, निश्चित रूप से राष्ट्र के दो पक्ष लेने वाले हैं, अवश्य इसमें सफलता पा सकते हैं। हमें निराश नहीं होना है और हमें अवश्य इस प्रकार के ठोस कदम उठाने होंगे जो यह सब पाप धुल सकता है, और इसका कोई भी रास्ता नहीं है। आप लोग जब तक करेंगे नहीं तब तक के लिए ये कहना होगा, उलझा हुआ मनुष्य वर्ग है जो पशुओं के द्वारा सुलझन समझ सकता है। ये सुलझन पशुओं से ले सकते हो आप, इतने उलझ गए, इतने उलझ गए राजनीति में जो वहां पर पहुंच गए और फिर भी वहां पर जाने के उपरांत आपका अधिकार नहीं है। जो बुरा है उस बुरा को फेंक दें, जो अच्छा है उसको स्थापित कर दें, लेकिन नहीं कर पा रहे। ये कुछ कमजोरियां हैं, ये लोकतंत्र की कमजोरियां मानी जाती है। यदि एक राज सत्ता होती आज ये की राजा कोई तैयार हो जाता, निश्चित रूप से यथा राजा तथा प्रजा वाली बात आ जाती। राजा कह दे फिर प्रजा क्यों नहीं करेगा, लेकिन लोकतंत्र ऐसा हो गया कि अच्छाइयों को निर्मूल करने के लिए सिद्ध हो रहा है। जो जो अच्छाइयां थी वो सारे की सारे निर्मूल होती चली जा रही हैं, जो बुराई हैं वो सारे सारे स्टॉक में हैं और बढ़ती हो रही है, उनकी संख्या और बढ़ती चली जा रही है। 50 वर्ष में यह इतिहास बन गया। अब इस इतिहास को कोई भी रोक नहीं सकता कि भारत वर्ष में करोड़ों की तादाद में इतनी संख्या में कि जानवरों की हत्या हुई और उसके बदले में मुद्रा को लेने का प्रयास किया गया है। यह स्वर्ण अक्षर में नहीं खून के अक्षरों से लिखा हुआ इतिहास आप लोगों को मिलेगा। ये कालीशाही नहीं, ये लालशाही का इतिहास मिलेगा जो आप लोगों के लिए हमेशा हमेशा एक भयावह दृश्य सामने ला करके रख सकता है। डेंजर है ये, यह डेंजर है, क्योंकि लाल वस्तु अपने लिए ठीक नहीं होना चाहिए। ये खून का प्रतीक हो गया। पहले भी महाभारत बनता था लेकिन वह यहीं तक सीमित था। आज पशु वर्ग पक्षी वर्ग के ऊपर भी हमला हो रहा है। यह पशुओं के साथ आप लोगों का अन्याय का युद्ध है। यह युद्ध ही नहीं, एक प्रकार का जबरदस्ती अनधिकार चेष्टा बोलना चाहिए, जो कि आप लोग अपने दो बाहु वाले हैं उनके पास बाहु नहीं है, उनके पास केवल चलने के लिए पैर हैं। पैरों के द्वारा पाप नहीं हुआ करता है, ध्यान रखो, पाप हुआ करता है हाथों के द्वारा। कर्तृत्व का वाचक कर को कहा है, पैर को नहीं। पैर तो चल जाता है, दुख से बच जाता है, दूसरों को बचा सकता है। आप लोग उनके ऊपर सवार हो जाते हैं, आपकी यात्रा हो जाती है, लेकिन आप लोग उनकी यात्रा में बाधक बन रहे हैं, उनकी यात्रा में चल पैरों से कर रहे हैं। आपके पास भी यदि ये दो हाथ हैं, समंतभद्र महाराज जी के अनुसार पैर के रूप में काम ले ले तो बहुत अच्छा है। समझ में बात आ गई क्या? आ गई बताओ। दो पैर तो है ही, अब दो हाथ है, इनको भी पैर के रूप में काम ले लो। एक पूंछ की आवश्यकता पड़ जाएगी, भगवान से हम प्रार्थना कर लेते हैं। वो क्या करें, वो कभी भी इस प्रकार के हमला करते ही नहीं, उनके पास हाथ नहीं। हाथ के द्वारा ही अपनी रक्षा और दूसरे के ऊपर मार होती है, लेकिन हाथ के द्वारा ही दूसरे को साथ लगाया जाता किया ही जा सकता है। वो कभी किसी को साथ नहीं दे सकते, लेकिन वो अपने पीठ के ऊपर बिठा करके आपकी यात्रा करा सकते हैं। आप चाहें तो अपने साथ हजारों नहीं, अपने साथ लाखों नहीं, अपने साथ करोड़ों, अपने साथ देश, अपने साथ विदेश, विश्व को भी लगा सकते हो और अच्छाई की ओर इंगन दे सकते हो और निर्देशन दे सकते हो, मार्ग प्रशस्त कर सकते हो। ये करना तो छूट गया, लेकिन इन हाथों के द्वारा अन्याय का काम प्रारंभ हो गया। इसलिए ये हाथ सर्वप्रथम हाथों में हथकड़ी लग जाती है। पशुओं में कभी भी हमने भेड़ी और हथकड़ी नहीं देखी और वह गुनाह नहीं माना जाता। आज तक तो घोड़े को किसी ने जेल में बंद नहीं किया, आज तक किसी गैया को किसी जेल में बंद नहीं किया। बहुत वो भी मुंह मारते हैं, घास फूस खा जाते हैं, लेकिन आप जैसे घास फूस नहीं खाते। वो एकमात्र सुबह के खा रहा तो सुबह के लिए ही खा जाएंगे, शाम के बारे में कभी मुंह मारेंगे नहीं, लेकिन आप बरसों की तैयारी करते हैं। इसलिए जो बरसों की तैयारी करता है, अपने हाथों के द्वारा अन्याय करके उसको जेल भेजा जाता है, और वो जेल में रह करके उन पशुओं की उस बात को समझ लेना चाहिए, पशु कभी भी इस प्रकार के अन्याय नहीं करते हैं। न घोड़ा, न कुत्ता, न बैल, न हाथी, न ऊंट, न और कोई भी नहीं, हिंस से हिंस भी कभी भी जेल में नहीं रहेंगे। भले ही वह बंद पिंजड़े में रह सकते हैं जैसे सिंह वगैरह, लेकिन उसको जेल नहीं माना जा सकता। लेकिन यह भी ध्यान रखना, सिंह यदि जेल में भी पिंजड़े में भी रह जाएगा, तो हमने मूक माटी में उल्लेख किया है, सिंह के गले में कभी पट्टा नहीं बन सकता, वह पट्टा वहां पर भी खुला रहता है। और आप जेल के बाहर भी रह जाएंगे तो हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी और गले में जंजीर। चलो, चलना नहीं हो रहा है, चलो, ऊपर से और चाबुक दिया जाता है और खींचते खींचते आप लोगों को ले जाया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है। गुनाह पाप के कारण जेल में बंद किया जाता है। मैं ये सोच रहा हूं, करोड़ों का वध हो रहा है और वध करने वालों को कोई भी जेल नहीं भेज रहा है, ये कौन सा लोकतंत्र है? बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इसलिए उलझे हुए मनुष्यों के लिए, सुलझे हुए पशुओं के उदाहरण रत्नगण श्रावकाचार्य कारणी समंतवद महाराज ने दिए हैं, और उनको देख करके आप लोगों को रत्नगण श्रावकाचार्य के अनुसार कुछ आचार संहिता के अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयास करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म।
वंदना के स्वर जब अंतस से उभरते हैं तो वे पारिजात के पुष्पों का रूप धारण करते हैं। स्तुति की सुरभि से सुरभित इन पुष्पों में गुरुवर विद्यासागर का ही रूप दिखाई देता है। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, सारे जहां में हम तस्वीर लिए फिरते हैं। जैसे सूरज की किरणें कमल की पांखुरी को मुखरित कर देती है, वैसे ही गुरु की वाणी शिष्य के भीतर सोए हुए परमात्मा को जगा देती है। बिंदु से बिंदु और क्षुद्र से विराट तक की अंतर यात्रा में गुरु पथ के प्रदीप की तरह पथ प्रदर्शित करते हैं, तभी तो ऐसा लगता है।
भव्य जीवों को तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मनाने वह समोसरण की दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। कालचक्र के प्रभाव से वर्तमान समय में हिंसा, अराजकता, अन्याय, भ्रष्टाचार जैसा दूषित वातावरण अंधकार रूप में व्याप्त है, किंतु हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरुवर रूप में ऐसे तेज सूर्य प्रकाश पुंज का सानिध्य प्राप्त है। ऐसे गुरु दर्शन मात्र से मन का कलुष मिट जाए, ऐसी गुरुवाणी जैसे दिव्य ध्वनि, ऐसे गुरु परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के परम शिष्य आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में सत सत वंदन। आचार्य श्री जी के प्रवचनों का संग्रह प्रस्तुत है। आचार्य श्री जी के प्रवचनों की सीडी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें ब्रह्मचारी जी श्री अजित वीर, श्री दिगंबर जैन उदासीन आश्रम इंदौर, दूरभाष 545744।
पतझड़ न रहे इसलिए बसंत चाहिए, पतझड़ न रहे इसलिए बसंत चाहिए, कुरीतियों का अब तो हमें अंत चाहिए। तंग घना अज्ञानता का छारना है घर, आज विद्यासागर जैसा संत चाहिए।